Hare Krishna. So this is a lecture by His Grace Rukmini Krishna Prabhu in East of Kailash Temple, Shri Radha Partha Sarthi at 8:20 on 21st June 2007. Topic of the lecture is Art of Hearing. Hare Krishna. Shravanam.
क्योंकि इसकी रचना विशेषतया मानव समाज की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए की गई थी और यह शिष्य परंपरा से रूढ़िगत चली आ रही है। जो भाग्यशाली है केवल वही भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवत सुनने का सुअवसर प्राप्त कर सकता है। भौतिक शक्ति के जादू के अधीन सारे जीव स्वल भौतिक सुख के निमित्त ही अनेक कठिनाइयों के बंधन में फंसे हुए हैं। वे सकाम कर्मों की उलझनों को नहीं जानते हुए उनमें लगे रहते हैं। वे इस मिथ्या भाव के कारण कि शरीर आत्मा है अनेकानेक मिथ्या आसक्तियों से अपने को संबंध करते हैं। वे सोचते हैं कि वे भौतिकवादी साध सामग्री से सदा अनुरक्त रह सकेंगे। जीवन की यह मिथ्या भ्रांति इतनी प्रबल होती है कि मनुष्य भगवान की बहिरंगा शक्ति के अधीन जन्म जन्मांतर कष्ट उठाता रहता है। यदि वह भागवत ग्रंथ और भागवत जानने वाले भक्त भागवत इन दोनों के संपर्क में आता है तो ऐसा भाग्यशाली व्यक्ति भौतिक पाश से छूट जाता है। अतएव संसार के दुखी लोगों के प्रति दया के कारण श्री मैत्रेय मुनि पहले श्रीमद् भागवत के विषय में बोलने का प्रस्ताव रख रहे हैं। ओम अज्ञानमतिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपरान्तिकम् वन्देहम् Thank you. ये अध्याय है श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंध का आठवां अध्याय और अध्याय का नाम है लघु दक्षा विष्णु से ब्रह्मा का प्रारंभ। और पिछले अध्याय में भी देखा कि किस ढंग से इन्होंने मैथन से प्रश्न पूछ रहे हैं और अभी वो श्रृंखला चल रही है। और मैत्री मुनि जी आज के श्लोक में बता रहे हैं, सोहम निराणाम क्षण सुखाय दुख महदाना निर्माय तस्य प्रवर्तये भागवतम पुराणम यदा साक्षात भगवान शिक्षा। पिछले श्लोक में जो कल चर्चा की गई थी, मैत्री मुनि जी ने इंद्र जी को धन्यवाद दिया था और कहा था कि आप गुरु वंश से हैं और गुरु वंश में जितने भी पहले राजा गुरु हुए हैं सबके सब महत् सत सेवनीय वो शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए योग्य है और आप ही उसी कुल में उत्पन्न हुए हैं। और आश्चर्य की बात है कि तुम्हारे प्रयास से भगवान की दिव्य लीलाएं प्रति क्षण नूतन से नूतन दर होती जा रही है। तो यहां मालूम चल रहा है कि श्रोता और वक्ता के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए। अगर श्रोता उत्साही है तो वक्ता भी उत्साहित हो जाता है और फिर भगवान की कथा का अमृत का प्रभाव डालना होता है। तो जैसे विदुर जी ने उत्साह दिखाया और सुनने के लिए, तो मैत्री मुनि का उत्साह बढ़ा और मैत्री मुनि का उत्साह बढ़ा तो आज हम क्या कह रहे हैं कि उन सभी लोगों के लिए सोहम निर्णाम शुभ सुखाय दुखम महत गदाना कि संसार में अधिकतर लोग शुभ सुखाय बहुत ही थोड़े सुख के लिए बहुत ही थोड़े सुख को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, दुखाय महत गदाना बहुत ज्यादा दुख प्राप्त कर रहे हैं। कितना जिसे कहते हैं विडंबना है, ये भौतिक जगत विडंबनाओं से भरा हुआ है। थोड़े से सुख को प्राप्त करने के लिए कितने कष्ट हमें उठाने पड़ते हैं। यही बात भागवतम के 11 स्कंद में उद्धव जी कहते हैं कि क्षुद्र सुखम उरुतर्षणम कि ये संसार का सुख तो बहुत ही क्षुद्र है बहुत छोटा है उरुतर्षणम लेकिन उसको प्राप्त करने की तृष्णा बहुत महान रहती है। तो उसके लिए क्या है, इस छोटे सुख को प्राप्त करने के लिए कितना दुख उठाया जा रहा है। तो इन्हीं के विरमाय तस्य इसी का शमन करने के लिए कि छोटे सुख के प्राप्त करने के लिए हम इतना कष्ट उठा रहे हैं, इसी का शमन करने के लिए मैत्री मुनि कह रहे हैं प्रवर्तय भागवतम पुराणा यदा मैं साक्षात भगवान ऋषि थे। अब मैं भागवत पुराण से आपको प्रारंभ करके सुनाता हूं जो कि भगवान ने साक्षात ऋषियों को सुनाया है। यानी कि मैत्री मुनि जैसे जो महान पुरुष हैं वो कितने दयाशील दयावान हैं, जैसे कि बताया गया वो भी घृणा दिए घोरी दा चला कि इनसे ज्यादा दयावान कोई नहीं हो सकता जो भगवान की कथाओं का प्रचार करे। तब कथामृतम तप्त जीवन इस संसार में भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक जीव तपा हुआ है, तीन प्रकार के तप से प्रत्येक व्यक्ति तपा हुआ है। तो ऐसे तप्त जीवन तप कथामृतम तप्त जीवन तो इसमें भगवान आपकी कथाएं ही अमृत के समान है और जो आपकी कथाओं का प्रचार कर रहे हैं वो असली दयावान है। तो यहाँ पे मैत्री मुनि जी अपने इस दया को प्रदर्शित कर रहे हैं और हम सब पर दया कर रहे हैं कि विदुर जी के उत्साह को देखते हुए वो भागवत की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसे हम देख सकते हैं कि जब एक श्रोता उत्साही हो उससे पूरे जगत का उद्धार हो सकता है। विदुर जी की ये प्रश्न थे कि भगवान के विषय में और सुनना चाहते थे इससे मैत्री मुनि का उत्साह बढ़ा और उन्हें भागवत पुराण से कथा प्रारंभ की जिससे हम सबका लाभ हो। तो इससे हमें सीखना चाहिए कि किस ढंग से श्रोताओं और वक्ताओं के बीच में संबंध होना चाहिए और भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए हमें कितना उत्साही होना चाहिए। तो यहां बताया गया कि जो भागवत पुराण है वो जीवन की हर समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसीलिए जब हम गाते हैं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयं उदीरये, भागवत पुराण को जय बोला गया है। जय का अर्थ है जो हमें विजय दिलाए। किसके विजय दिलाए, जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें विजय दिलाते। तो ये भागवत पुराण पूर्ण रूप से अमल पुराण है, ये चैतन्य महाप्रभु का मत है, श्रीमद् भागवत अमलम पुराण। ये वैसे तो इसकी गिनती सात्विक पुराणों में होती है, लेकिन वास्तव में सात्विक नहीं है, परम सात्विक है, ये प्रकृति के तीन गुणों में नहीं आता और हर प्रकार के कैटर धर्मों से ये परे है। श्री राधा माता सात्विक जी भी कहा जाता है कि जो वेदों में हमें निर्देश प्राप्त होते हैं, वेद हमें निर्देश देते हैं राजाओं की तरह और पुराण हमें निर्देश देते हैं मित्रों की तरह और जो काव्य हमें निर्देश देते हैं प्रेमी की तरह और जो भागवत पुराण है इनमें तीनों का समन्वय है। ये राजाओं की तरह भी आदेश देता है, प्रेमी की तरह भी और मित्र की तरह। और जो भागवत पुराण है और इसका पूरा भागवत पुराण पहले स्कंध से लेकर बारहवें स्कंध तक भगवान के दिव्य शरीर का प्रतिनिधित्व है, सब जानते हैं। और बताया गया है किसकी रचना से हमारी सब समस्याओं का समाधान होगा, यही सूत्र गोस्वामी जी नैमिष शरण में इकट्ठे हुए ऋषियों को बताते हैं। पहले स्कंध का सातवें अध्याय का छठा श्लोक है कि अनर्थो अपोक्षमां साक्षात् भक्ति योग अथोक्षजा लोकस्य अज्ञानतम विद्वंस चक्रे सावत संहिता। कि अनर्थों को क्षमा साक्षात जितने भी तरह के अनर्थ हैं उसका यह शमन करता है। तो अनर्थों का शमन कैसे होगा? साक्षात भक्ति योग अधोक्षज, जब अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति योग में लगेंगे। लोकस्य अज्ञानतम, अधिकतर लोगों को यह नहीं मालूम कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से ही हमारे अनर्थों का नाश होगा, तो इसलिए क्या किया? लोकस्य अज्ञानतम विध्वंस चक्रे सात्वक संहिता, इसी अज्ञानता का नाश करने के लिए वेद व्यास जी ने चक्रे सात्वक संहिता इस ग्रंथ की रचना की, जिससे कि जन साधारण के अज्ञान का नाश हो और वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रत होकर अनर्थों का नाश कर सके। तो अनर्थ क्या है, लखनऊ का तात्पर्य में बहुत विस्तार में बता रहे हैं कि क्या क्या अनर्थ हैं। इस संसार में हम देखते हैं कि हम तरह तरह की उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए कार्यरत रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वास्तव में जो भी हम प्राप्त करते हैं सबके सब अनर्थ हैं। भागवतम के दसवें स्कंध में राजा मुचुकुंद बता रहे हैं कि उनको पूरे के पूरे धन का सुख प्राप्त हो गया, यश प्राप्त हो गया, मैथुन का तथा सुख प्राप्त कर लिया, सब दिशाओं को जीत लिया, इतना सब कुछ करने के बाद भी उनको यह अनुभव हुआ कि इसमें कुछ भी कीमत नहीं है, कुछ भी अर्थ नहीं है। जो असली अर्थ है वो है कि हमें भगवान के शुभ भक्तों की संगति का अवसर प्राप्त हो जाए। इसलिए वो कह रहे हैं कि जैसे हम भगवान की शुभ भक्तों की संगति में आते हैं हमारा भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। ये हम सबका भी अनुभव है कि जैसे हम भक्तों की संगति में आते हैं हमारा भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है। और बताया गया है कि यही असली सच्चाई है और इस भक्तों के संग को प्राप्त करने के लिए अगर हमें कोई भी कीमत अदा करनी पड़े हमें कर देनी चाहिए, क्योंकि इसी मिनी भक्तों के संग से हम जीवन की सच्चाई को समझेंगे। जब हम भक्तों के संग में आते हैं तब हमारा जो इतना गहरा भ्रम है, इस संसार में हम कई कई जन्मों से कई कई युगों से रह रहे हैं और बहुत गहरा भ्रम हो गया है, तो ये भ्रम तभी कटेगा जब हम भक्तों के संग में रहेंगे। और उसके अलावा भक्तों के संग के अलावा सब कुछ भ्रम है। इसीलिए यहां पर श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भाग्यशाली हैं केवल वही भगवान के शिव भक्तों की संगति में श्रीमद् भागवतम सुनने का सुअवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा भाग्य है कि अगर हम भगवान के भक्तों के बीच में श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर सके, सबसे बड़ा सौभाग्य है। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंध में जब पृथु महाराज के सामने भगवान प्रकट होते हैं तो पृथु महाराज यही प्रार्थना करते हैं, पृथु महाराज ये प्रार्थना करते हैं, भागवतम के 20वें अध्याय का 25वां श्लोक है, उसमें पृथु महाराज ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि महान पुरुष आपके गुणों का वर्णन करते हैं उत्तम श्लोकों से, लेकिन आपके जो चरणों की प्रशंसा है वो केसर के कणों के समान है। तो जब ऐसे महान पुरुष की दिव्य ध्वनि उनके मुख से निकलती है तो वो आपके चरणों के केसर धूलि की सुगंध को साथ लेकर निकलती है, और वही सुगंध जब हमारे कर्मों में प्रवेश करती है तो हम सब जो कि भगवान के साथ अपने संबंध को भूल चुके हैं, विस्मरण हो चुका है, उसकी पुनः स्मृति होती है। और जब हमें भगवान के साथ संबंध की पुनः स्मृति होती है तब हम जीवन के असली मूल्य को समझ पाते हैं, जीवन के असली अर्थ को समझ पाते हैं। यानी कि जब भगवान के शुद्ध भक्तों से भागवत को सुनते हैं तो हम कृष्ण के साथ जो संबंध को भूल चुके हैं उसको हम पुनः स्थापित करते हैं, और ये हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है। और जब तक हम भगवान से संबंध को भूले हुए हैं हम इस तरह तरह की समस्याओं में जकड़े रहेंगे और इसी भौतिक जगत में सड़ते रहेंगे। तो इसलिए बताया गया है कि शल सुखाय दुखम, जो अल्प सुख प्राप्त करने के लिए हम कष्ट उठाने के भ्रम में लगे हुए हैं, इसका नाश तभी होगा जब हम कृष्ण के साथ अपने संबंध को पहचान पाएंगे। वो तभी होगा जब भगवान के शुद्ध भक्तों से हम भागवत का श्रवण करेंगे। जब हम भक्तों के बीच में श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं तो हमारी श्रद्धा का विकास होता है। सताम प्रसंगम हम वीर संविदो भवंत हित कर्ण रसायन तथा तत्जोश नाश अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। ये भगवान कपिल बता रहे हैं। सताम प्रसंगम हम वीर संविदो, जब सताम भक्तों के बीच में के संग में हम भगवान का गुणगान सुनते हैं तो क्या होता है, तत्जोश नादशु अपवर्ग वर्तमनी, तुरंत ही मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। भवंती हित कर्ण रसायन कथा, तो ये जो भगवान की कथा है जो हृदय और कर्णों के लिए अति प्रिय है और एक रसायन है। रसायन का अर्थ है जैसे कि आयुर्वेद में बताया जाता है, रसायन एक तरह का पदार्थ है, एक तरह का केमिकल है जो कि मृत से मृत व्यक्ति को भी जीवित कर देता है। तो इसी ढंग से हम सब आध्यात्मिक रूप से मृत हैं, और जैसे ही हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं भक्तों के संग में तो हमें जीवन वापस आता है। तो ये रसायन है। और क्या होता है, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, इससे हमारी श्रद्धा में विकास होता है। आचार्य गुरु का कहना है कि श्रद्धा रति भक्ति ये तीन बार इसलिए बोला गया कि जैसे कि रूप गोस्वामी जी भक्ति रसा में संजू बताते हैं कि भक्ति की तीन तरह की भक्ति होती है, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो अगर हम भगवान के भक्तों के बीच में भागवत का श्रवण करेंगे तो हम साधना भक्ति से भाव भक्ति में, श्रद्धा से रति, रति से श्रद्धा रति भक्ति, वो भक्ति है प्रेम भक्ति, हम प्रेम भक्ति को प्राप्त कर लेंगे अगर हम भक्तों के बीच में भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे। तो यहां पर सताम बोला गया है। सताम का अर्थ श्री प्रभुपाद जी ने अनुवाद जो किया है, सताम शब्द का अनुवाद किया है ट्रुथफुल डिवोटीज, सच्चे भक्त। आप कोई पूछ सकते हैं ये कौन सी बात है, झूठे भक्त भी होते हैं क्या? प्रभुपाद ने बोला ट्रुथफुल डिवोटीज, सच्चे भक्त। तो सच्चे भक्त का क्या अर्थ हुआ, सच्चे भक्त का यह अर्थ हुआ कि हम जो कर रहे हैं वही करें। अगर हम भागवत कक्षा में बैठे हैं श्रवण के लिए तो केवल श्रवण का ही प्रयास करें, अगर हम जप करने बैठे हैं तो केवल जप करने का ही प्रयास करें। यानी कि हम जप भी कर रहे हैं साथ साथ कुछ और योजना बना रहे हैं, भागवत कक्षा में श्रवण करने भी बैठे हैं लेकिन भौतिक रूप से बैठे हैं और मन कहीं और भटक रहा है। तो मन तो भटकेगा लेकिन जो सताम होंगे, जो सच्चे भक्त होंगे, वो बार बार प्रयास करेंगे कि मन को खींच के लाएं और जो कार्य कर रहे हैं उसी पर ध्यान दें। ये हैं सच्चे भक्त। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर सताम कहलाने योग्य हम नहीं, क्योंकि मन तो भागेगा लेकिन प्रयास अगर कर रहे हैं तो मन को केंद्रित करने का तो हम सताम कहलाएंगे। तो बताया गया है श्रवणता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत भद्राणी विघ्नोति सुहृत सताम, इसमें भी सताम शब्द आया है। यहां पर भी प्रभुपाद ने ट्रुथफुल डिवोटीज इसका अनुवाद किया है कि अगर हम ट्रुथफुल हैं, सच्चे रूप से श्रवण कर रहे हैं तो क्या होगा, श्रवणता स्वकथा कृष्ण, कृष्ण हम सबके हृदय में बैठे हैं परमात्मा के रूप में। स्वकथा जब अपनी कथा सुनते हैं तो प्रसन्न होते हैं, फिर क्या करते हैं हृदयंत भद्राणी विघ्नोति सुहृत सताम। तो हमारे हृदय में बैठे तरह तरह के अभद्र हैं, अभद्र का अर्थ हुआ जो भोगने की प्रवृत्तियां हैं उसको स्वयं परमात्मा धोते भगवान कितने कृपालु हैं, स्वयं उसको ढोते हैं। इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, हम सब जब भागवत श्रवण करते हैं तो अक्सर हमें नींद आ जाती है, हम सो सकते हैं लेकिन राधा पार्षादी कभी नहीं सोएंगे, उनको पूरा आनंद आ रहा होता है। तो चाहे कैसी भी कथा चल रही हो, हमें इसलिए सुनने का प्रयास करना चाहिए कि इससे राधा पार्षादी प्रसन्न हो रहे हैं, हमारे हृदय में बैठे परमात्मा प्रसन्न हो रहे हैं। तो इसके लिए हमें श्रवण केवल यही कारण होना चाहिए कि ये भगवान को प्रसन्न करेगा और हमारे हृदय में बैठे परमात्मा प्रसन्न होंगे और वो हमारे हृदय में बैठे जो अवध हैं उनको साफ करेंगे। देखिए, जब तक हम भगवान को नहीं जान पाएंगे हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। तम ने विदित्वा मृत्यु तरंगी, उनको जानकर ही हम जन्म मृत्यु को पार कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। अब उनको जानने का तरीका क्या है, ना तो चक्षुवृष्टि, ना वाक, ना मना, ना हमारी भौतिक आंखें जा सकती है, ना वाणी जा सकता है, ना मन जा सकता है। तो कैसे उनको जान पाएंगे? ये भगवान की विशेष कृपा है कि भगवान की कथाएं जो कि दिव्य ध्वनि है वो हमारे कर्मों के द्वारा प्रवेश करती है और केवल श्रवण के माध्यम से ही हम भगवान को जान सकते हैं और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है कि हम भगवान के विषय में जान सके। और यही बात भगवान उद्धव को बता रहे हैं कि जिस ढंग से आंखों में जब कुछ रोग आ जाता है तो उसके ऊपर हम दवाई लगा के आंखों को ठीक करते हैं फिर वो बीमार व्यक्ति सब कुछ देख सकता है, इसी ढंग से जब कोई मेरी कथाओं का श्रवण करता है तो हृदय में बैठी सारी कर्मश को मैं साफ कर देता हूं, तब वो साक्षात रूप से परम सत्य का आध्यात्मिक रूप में दर्शन करता है। तो अगर हम भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, अपने परम मित्र को मिलना चाहते हैं, श्री प्रभुपाद कहते हैं प्रवचनों में कि हम कृष्ण के साथ नृत्य कर सकते हैं, कृष्ण के साथ खेल सकते हैं, ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। इस माया के आगे नृत्य करना हमारा स्वाभाविक स्थिति नहीं है, कृष्ण के साथ नृत्य करना, कृष्ण के साथ खेलना, ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। तो इस स्वाभाविक स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं केवल श्रवण के माध्यम से, केवल श्रवण के माध्यम से, और कोई तरीका नहीं। तो इस बात की महत्वता को हमें समझना होगा। जब हम भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं तो हमारे अंदर भगवान की प्रेममयी सेवा करने की अग्नि प्रज्वलित हो जानी चाहिए, इतना उत्साह बढ़ जाना चाहिए कि हम भगवान की सेवा में रत हो जाए, ये होना चाहिए श्रवण का प्रभाव। अगर ऐसा नहीं हो रहा इसका मतलब हमारे श्रवण में कुछ कमी है, क्योंकि श्रवण अगर सही ढंग से होगा तो हम रुक नहीं पाएंगे, तुरंत भगवान की सेवा में लगेंगे ही लगेंगे। और केवल श्रवण के माध्यम से ही हम भगवान कृष्ण को अपने प्रति आकर्षित कर सकते हैं, और मनुष्य जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है कि हम कृष्ण को अपने प्रति आकर्षित कर सकें। आज के इस युग में प्रत्येक जीव किसी न किसी का ध्यान आकर्षण करने में लगा रहता है, युवक चाहता है कि वो युवतियों का ध्यान आकर्षित कर सके, युवतियां चाहती हैं युवक का ध्यान आकर्षित कर सके, तो हमारा यही मन में स्मरण चलता रहता है। लेकिन ये बहुत बड़ी कहते विफलता होगी मनुष्य जीवन की। मनुष्य जीवन की केवल एक ही सिद्धि है, एक ही सफलता है कि हम कृष्ण को अपने प्रति आकर्षित कर सके, तो वो भी हम केवल भागवत श्रवण से ही कर सकते हैं। जैसे कि भागवत में वर्णन आता है जो रुक्मिणी देवी किनसे कथा सुनती थी भगवान के विषय में, नारद मुनि जी से। जब रुक्मिणी देवी ने कभी कृष्ण का दर्शन भी नहीं किया तो भगवान की कथाओं को सुनते सुनते रुक्मिणी देवी जी का कृष्ण के प्रति आकर्षण हो गया। रुक्मिणी देवी जी का कृष्ण के प्रति आकर्षण हो गया, लेकिन कृष्ण का भी रुक्मिणी के प्रति आकर्षण हो गया। हमें देखना पड़ेगा कि कृष्ण एक व्यक्ति है, जब हम उनके बारे में सुन रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम कृष्ण के प्रति आकर्षित हो, तो कृष्ण ऐसे उदासीन व्यक्ति नहीं है, कृष्ण भी बहुत आतुर है, तो कृष्ण भी रुक्मिणी देवी के प्रति आकर्षित हो गए। और जब वो जरासंध के साथ युद्ध कर रहे थे तो युद्ध छोड़कर आ गए, देखिए जैसे एक पागल प्रेमी होते हैं, युद्ध छोड़कर आ गए, सोने दो बंदा मुझे दुनिया में, कहेंगे रणछोड़ कहने दो। फिर उनको मालूम था कि रुक्मिणी देवी ने एक ब्राह्मण को भेजा संदेश लेकर, मुझे भागना चाहिए उस संदेश को प्राप्त करने के लिए। देखिए भगवान कितने आतुर हैं, बदनाम हो गए अभी तक रणछोड़ कहलाते हैं, रण को छोड़कर भाग गए कि मेरी प्रेमिका ने एक पत्र भेजा है उसको मुझे प्राप्त करना है। और तुरंत भाग कर गए और ब्राह्मण से जो पत्र लिया और ब्राह्मण को बोले भगवान कि मैं बहुत आतुरता से इसकी प्रतीक्षा कर रहा था और मैं कई रातों को सो नहीं पा रहा था। भगवान कह रहे हैं कि वो रात भर सो नहीं पा रहे हैं रुक्मिणी देवी जी की याद में, तो भगवान कोई ऐसी मस्करी नहीं कर रहे हैं। भाभी जगह में कोई व्यक्ति बोल सकता है हाँ हाँ बोलते आई लव यू, बोलते आई लव यू टू, है ना, दिखावा के लिए, दिखावे के रूप में संतुष्ट करने के लिए, मस्ती मंगाने के लिए, एक दूसरे की चापलूसी करने के लिए बोल देते हैं। भगवान ऐसे चापलूसी नहीं कर रहे थे कि ब्राह्मण कह रहे थे कि रुक्मिणी देवी जी बहुत आतुर हैं और कलयुग का विवाह होने लगा है और वो बहुत याद करते हैं, तो भगवान ने बोले कि मैं उनको बहुत याद करता हूँ ऐसे मत तसल्ली देने के लिए। नहीं, भगवान है परम सत्य है, तो कह रहे हैं कि मैं भी रात्रि भर सो नहीं पाता हूं उनकी याद में। तो भगवान रुक्मिणी के प्रति क्यों आकर्षित हुए, क्योंकि रुक्मिणी देवी जी भगवान के शुद्ध भक्तों से उनके कथाओं का श्रवण कर रहे थे। तो अगर हम भी कृष्ण को अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं, केवल एक ही तरीका है कि हम भगवान के भक्तों के बीच में बैठकर उनकी कथाओं का श्रवण करें। ये सबसे बड़ा सौभाग्य है, हमें इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के दसवें स्कंद में परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि जब हम भगवान की कथाओं को सुनते हैं तो हमें पांच तरीके के लाभ प्राप्त होते हैं। ये सातवें अध्याय का दूसरा श्लोक है, तो बता रहे हैं कि जब भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं सबसे पहला लाभ तो ये होता है कि हमारे लीलाओं के श्रवण में रुचि उत्पन्न होती है, और दूसरा लाभ ये होता है कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और तीसरा लाभ ये होता है कि हमारी जितनी भी तृष्णाएं हैं, हमारी बहुत तृष्णाएं हैं बहुत जगह पर सुख प्राप्त करने की सारी तृष्णाएं शांत हो जाती हैं, और चौथा लाभ ये होता है कि हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, और पांचवा लाभ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वो होता है कि हमारे भक्तों से मित्रता हो जाती है। केवल श्रवण मात्र से ही हमारे भक्तों से मित्रता होगी अगर हम भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का श्रवण करते हैं, और सारी तृष्णाएं समाप्त होगी, अंतःकरण शुद्ध होगा और लीलाओं में रुचि उत्पन्न होगी और भक्ति में हम आगे बढ़ेंगे। तो ये पांच तरह के लाभ हमें प्राप्त होते हैं अगर भगवान की कथाओं को सुनते हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सही ठाकुर महाराज कहते हैं कि जब भगवान के शुद्ध भक्तों से हम श्रवण करते हैं तो उनके मुख से निकली हुई वाणी से हमारे हृदय में तरह तरह के जो अनर्थ हैं वो समाप्त होते हैं, तो हृदय की दुर्बलता समाप्त होती है और हमारे में दृढ़ता आती है कि हम आध्यात्मिक जीवन को स्वीकार कर सके। आगे कहते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज कि ये भौतिक जगत जो है ये हम सब जीवों के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड है। टेस्टिंग ग्राउंड का अर्थ हुआ कि भगवान ने सृष्टि की रचना की थी हम जैसे बद जीवों को शुद्ध करने के लिए, तो जैसे किसी बड़ी कोई कार की कंपनी है, मर्सिडीज कंपनी है, तो कोई भी पार्ट को अगर वो कार में लगाते हैं, असेंबली में लगाते हैं, उससे पहले उसको अच्छे तरीके से टेस्ट कर लेंगे, तरह तरह के उस पर प्रेशर टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, पूरे रूप से टेस्ट हो जाएगा तब वो गाड़ी में फिट करेंगे। इसी ढंग से अगर हमें भौतिक जगत से निकल के आध्यात्मिक जगत में जाना है तो खूब परीक्षा ली जाती है, हमें खूब पटका जाता है, जगह जगह पर उठाया जाएगा, पटका जाएगा, उठाया जाएगा, पटका जाएगा, तो इतनी उथल पुथल है इस संसार में, पदम पदम यद विपदम, कि अच्छे अच्छे लोग जो भक्ति में काफी सालों से लगे हैं वो विचलित हो जाते हैं। लेकिन इस सब टेस्ट को हम पास तभी कर पाएंगे जब हम नियमित रूप से भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, तब हमारी हृदय की दुर्बलता समाप्त होगी और हमें शक्ति मिलेगी इस उथल पुथल को सहने की, अन्यथा हम फिर से आध्यात्मिक जीवन में जो हमारी श्रद्धा है उसको खो बैठेंगे और फिर से इस भौतिक जगत के चंगुल में फंस जाएंगे। तो ये हमें शक्ति देती है कि इस भौतिक जगत के तरह तरह की विविधताओं का भी हम सामना कर सके। और देखिए श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे इस्कॉन सोसाइटी की रचना ही इसीलिए की है कि हम ज्यादा से ज्यादा हमेशा कृष्ण कथा में ही लगे रहें। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में 13वें अध्याय में वर्णन आता है कि अद्वैताचार्य के घर में अभी महाप्रभु के अवतरण से पहले सब भक्तगण इकट्ठे होते थे और भगवान की कथा का श्रवण कीर्तन किया करते थे। तार संगे आनंद करे वैष्णव गण, कृष्ण कथा कृष्ण पूजा नाम संकीर्तन, दार संगे आनंद करे वैष्णव गण, कि सारे के सारे वैष्णव गण इकट्ठे होते थे और खूब आनंद प्राप्त करते थे। किसमें? कृष्ण कथा, कृष्ण पूजा, नाम संकीर्तन, केवल तीन कार्य करते थे। तो इसके तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बहुत रोचक बात लिख रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कृष्णा भानामित आंदोलन जो हमने किया है, बनाया है, वो केवल इसी सिद्धांत पर निर्भर है और इस कौन में इन तीन कार्यों के अलावा कुछ भी नहीं होता। कौन से तीन कार्य है? कृष्ण कथा, कृष्ण पूजा, नाम संकीर्तन। तो इस कौन सोसाइटी को बताया कि इस कौन के जो मंदिर है, केंद्र है, वो बैकुंठ के समान है और बैकुंठ में केवल यही होगा, कृष्ण कथा, कृष्ण पूजा, नाम संकीर्तन, और इस कौन में इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अगर हमें लगता है नहीं नहीं इसके अलावा ही सब कुछ है कि यहाँ तो राजनीति है, यहाँ पे मैनेजमेंट है, यहाँ पे ये है वो है, वो एक बहुत बड़ा भ्रम है। श्री प्रभुपाद कहते हैं कि हरे कृष्णा आंदोलन केवल शुद्धता पे चल रहा है, ये राजनीति पे नहीं चल रहा। इससे हमें शक्ति मिलनी चाहिए। इस आंदोलन की रक्षा स्वयं चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, तो किसी राजनीतिक उथेड़ से, अपने तिकड़मबाजी से हम इस हरे कृष्ण आंदोलन में नहीं रह पाएंगे। इस हरे कृष्ण आंदोलन में हम तभी रह पाएंगे जब इन तीन चीजों का सहारा लेंगे, कृष्ण पूजा, कृष्ण कथा, नाम संकीर्तन। बहुत से शुद्ध भक्त हैं इस संस्था में जो इन तीन कार्यों में रत हैं और उन्हीं के प्रयासों से ये संस्था चल रही है, तो हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। और जितने भी यहाँ की मैनेजमेंट है, जो भी हमें कुछ करना पड़ता है, उसका उद्देश्य केवल यही है कि हम इन तीन कार्यों को कर सके, कृष्ण पूजा, कृष्ण कथा, नाम संकीर्तन, और कुछ नहीं। इसके अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं होना चाहिए, और कोई हमारा ध्येय नहीं होना चाहिए। तो ये जो इस्कॉन संस्था बनाई गई है श्री गोपाल जी के द्वारा, केवल इसीलिए बनाई गई है कि हम सबको सुविधा मिले कि हम भक्तों के संग में रहकर भागवत श्रवण कर सके और इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा सके। बता रहे हैं श्री प्रभुपाद भागवतम के पहले स्कंध में कि जब तक हमारी श्रवण में उत्कंठा नहीं होगी, कथाओं के श्रवण में उत्कंठा नहीं होगी, तब तक हम भगवत धाम नहीं जा सकते। यह सबसे पहली योग्यता है। सबसे पहली योग्यता यही है कि ईगरनेस टू हियर, सुनने की उत्कंठा होनी चाहिए। उत्कंठा, उत्कंठा का अर्थ है कि कंठ ऊपर होना चाहिए वक्ता को देखते हुए, लेकिन अधिकतर कंठ हमारा नीचे हो जाता है। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेव सुनते हैं, कंठ नीचे हो जाता है, तो हम भगवत धाम कैसे जाएंगे? उत्कंठा होनी चाहिए, भगवत कथा श्रवण करने में बहुत उत्कंठा होनी चाहिए। ब्रह्म नारद पुराण में वर्णन आता है कि वैष्णव की पहचान क्या है। वैष्णव की पहचान ये है कि जहां उसको मालूम चले भागवत कथा हो रही है, तो उसके अंदर सारे भाव के लक्षण उत्पन्न होने चाहिए, उसके बाल खड़े हो जाने चाहिए, उसकी इतनी उत्कंठा होता है, उत्साह होता है श्रवण करने के लिए। तो हमें अपनी जांच पड़ताल करनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि कब ये उत्कंठा उत्पन्न होगी हमारे अंदर भागवत श्रवण करने के लिए। तो ये बता रहे हैं, इसी का आगे उत्तर दे रहे हैं भागवतम में, ये उत्कंठा हमें उत्पन्न तभी होगी जब हम उन वैष्णवों की सेवा करेंगे जिनके अंदर सुनने की यह रुचि है। केवल वैष्णव सेवा के माध्यम से ही भागवत श्रवण की उत्कंठा हमारे में उत्पन्न होगी, वैष्णव सेवा के माध्यम से। तो परीक्षित महाराज ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जीवन के सार को समझ गए हैं और जो ये समझ गए हैं कि भौतिक जगत दुखाले है, फिर क्यों नहीं उनके भगवान के कथाओं के प्रति रुचि उत्पन्न होगी? ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो समझ गया जीवन का सार क्या है और जो समझ गया कि इंद्रतृप्ति का रास्ता दुखों का रास्ता है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं कैसे भगवान के कथाओं के श्रवण को छोड़ सकते हैं? कैसे नहीं उनके भगवान के श्रवण में रुचि होगी, कथाओं के श्रवण में रुचि होगी? तो परीक्षित महाराज जी के इस प्रश्न का उत्तर अगर पूरा ना माने तो हम सब है, हम सब जीवन के सार को समझ गए हैं, हम सब ये भी समझ गए हैं कि भौतिक जगत में दुख है, इंद्र तृप्ति से कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा, ये दोनों बातें समझने के बाद भी हमारी भागवत श्रवण में रुचि नहीं है, तो परीक्षित महाराज को आश्चर्य दिखा रहे हैं कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसे लोग हैं, ऐसे हम जैसे बुरा बताने कुछ साधक हैं जिनकी रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, हालांकि वो समझ भी गए हैं कि जीवन का सार क्या है और इस भौतिक जगत में अगर हम कथा श्रवण नहीं करेंगे इंद्रवृत्ति में लगेंगे तो दुख ही दुख है, ये भी समझ गए हैं और ये भी समझ गया जीवन का लक्ष्य क्या है, फिर भी श्रवण में रुचि नहीं है। तो परीक्षित महाराज तो ढूंढ रहे हैं, वो सोच रहे हैं ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, इन कलयुग में ऐसे जीव हैं जो कि भी अभी अनर्थों से लड़ते हुए लड़ रहे हैं। तो क्यों नहीं हमारी श्रवण में रुचि उत्पन्न होती, इतनी महिमा सुनने के बाद भी? इसके ऊपर तो पूरा सप्ताह किया जा सकता है। भागवतम में इतने श्लोक हैं जिसमें भागवतम की महिमा बताई गई है, श्रवण की महिमा बताई गई है, अलग अलग तरीके से इसकी महिमा बताई गई है। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद भी हमारी रुचि उत्पन्न क्यों नहीं होती? तो अब हमको चर्चा करेंगे कि किस ढंग से हम अपने श्रवण को अच्छा कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एक बाधा आती है ध्यानपूर्वक श्रवण करने में, वो ये आती है कि जब हम श्रवण करने को बैठते हैं तो हम अपने मन से मन का सहारा लेते हैं और भौतिक तर्क वितर्क में जुड़ जाते हैं। तो भक्तिधाम महाराज कह रहे हैं कि श्रवण तभी अच्छा होगा जब हम सारे भौतिक तर्क वितर्कों को ताला लगा के बंद कर देंगे। श्रवण करने में हमें कोई तर्क का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहा जा रहा है कि केवल कृष्ण का एक नाम लेने से इतने पाप नष्ट हो जाएंगे जितने हमने पाप किए भी ना हो। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, एक नाम लेने से पाप नष्ट हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होगा। तो इस तरह से हम तर्क तक शुरू हो जाता है, एनालाइज करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे हम एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, अपने भौतिक मन और बुद्धि का सहारा लेते हैं, तो हम उस श्रवण के फल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो पहला है हमें भौतिक तर्क वितर्कों को बंद कर देना चाहिए। दूसरा है कि जो ज्ञान का प्रवाह है वो ऊपर से नीचे होता है, इट्स डिसेंडिंग प्रोसेस है। तो चाहे कोई भी वक्ता बैठा हो, अगर वो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ा हुआ हो, तो हमें उस वक्ता से बहुत विनम्रता से सुनने का प्रयास करना चाहिए, बहुत ही विनम्र भाव से और सेवा के भाव से सुनने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब तक विनम्रता से नहीं सुनेंगे वो ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा। हो सकता है कि जो वक्ता बैठ के कथा सुना रहा है उसका आचरण हमें ठीक ना लगे, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं वी मे नॉट बी परफेक्ट बट वी आर गिविंग दी परफेक्ट नॉलेज। तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हम वक्ता को अप्रिशिएट करें, उसकी प्रशंसा करें कि अरे वो हमें भागवत का संदेश सुना रहा है। हम ये ना करके उसके अवगुणों पर ध्यान देते हैं कि ये क्या सुनाएगा हमें। अक्सर बोला जाता है सो चूहे खा के बिल्ली हज को चली, आप देखो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और व्यास आसन से उतर के पता नहीं क्या करेंगे। तो हम इन बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तो ऐसा करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं और किसी का नुकसान नहीं कर रहे। क्योंकि केवल एक कथाओं का श्रवण ही है, इसके श्रवण के माध्यम से हम भगवान को जान सकते हैं। तो कोई भी वक्त है तो बहुत विनम्रता पूर्वक हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए, उसके अच्छे गुणों के अनुकूल देखने का प्रयास करना चाहिए कि इस समय तो वो हमें कृष्ण कथा सुना रहा है, प्रमाणिक गुरु परंपरा से जुड़ा हुआ है, तो उस कथा को सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो ऑलवेज अप्रिशिएट द डिवोटीज, हमेशा भक्तों की प्रशंसा करें। ध्यान रखें कि श्रवण कोई क्रिया नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, श्रवण एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ये श्रवण केवल एक घंटे का नहीं है, 8 से 9 केवल एक घंटे की एक्टिविटी नहीं है, ये पूरा प्रोसेस है। कैसे हमारी चेतना है, कैसे हमारी मानसिकता है, किस तरह से हम भक्तों से डील करते हैं, कैसे हमारे भक्तों के साथ संबंध है, ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। और पूरा का पूरा हमारा आध्यात्मिक जीवन श्रवण पर निर्भर है, ये श्रवण फाउंडेशन है, आधार है। तो बहुत विनम्रता से हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा भक्तों के गुणों पर ध्यान देना चाहिए। और तीसरा, जब भी हम सुने तो सेवारत कर्मों से सुनना चाहिए, भोगरत कर्मों से नहीं। भोगरत कर्मों से यह हुआ कि कई बार हम कथा सुनने आते हैं इंजॉय करने के लिए, मनोरंजन के लिए, भोगने की प्रवृत्ति से सुनने को आते हैं, और वैसे भी पूरा दिन इन कानों का प्रयोग करेंगे अलग अलग प्रजल्पास करने के लिए, गावने कथा सुनने के लिए। तो वैसे हम बैठ के कथा सुनेंगे तो कुछ कथा प्रवेश नहीं करेंगे, तो इस सेवारत कर्मों के द्वारा प्रवेश करेंगे। अतः श्री कृष्ण नाम आदि नाम अविग्रहक इंद्रिया सेवा मुखो ही जीवात्म स्वयं स्मृति अदा। इन भौतिक इंद्रियों से भगवान के नाम गुण मूल्यों को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन सेवा मुखे जब सेवा में अनुमुख होगी तभी ये ज्ञान प्रकाशित होगा। तो सेवा रत्नों के द्वारा हमें सुनने का प्रयास करना चाहिए। रुद्र गीत में चौथे स्कंध में भगवान शिव कहते हैं कि भगवान की कथाओं का श्रवण करना इन कानों का आभूषण है। तो भगवान ने हमें कान इसलिए दिए हैं कि हम अपनी कथाओं का श्रवण करें। तो सेवारत होकर सेवा के भाव से इसको सुनने का प्रयास करना चाहिए। और चौथा यह है कि जब हम कथा सुनने बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता, मन इधर उधर भटकता है। तो मन अशांत है। मन अशांत क्यों है? कि मन अशुद्ध है। और मन अशुद्ध क्यों है? क्योंकि हमारी इंद्रियां अशुद्ध हैं। और इंद्रियां अशुद्ध इसलिए हैं कि हम आहार निद्रा भय मैथुन सही ढंग से नहीं कर रहे। तो आहार निद्रा भय मैथुन को हमें नियंत्रित करना होगा, इनको शुद्ध करना पड़ेगा। जब ये शुद्ध होंगे तो हमारे इंद्रियां शुद्ध होंगी, इंद्रियां शुद्ध होंगी तो मन शुद्ध होगा, जब मन शुद्ध होगा तो बुद्धि शुद्ध होगी, और शुद्ध बुद्धि से हम इस सूक्ष्म ज्ञान को समझ पाएंगे। तो केवल शुद्ध मन का व्यक्ति ही इसको सुन पाएगा। देखिए कक्षा में इतने लोग बैठे होते हैं, वक्ता एक ही संदेश देता है लेकिन उसी संदेश का असर अलग अलग होता है अलग अलग लोगों पर। तो किस पर निर्भर करता है? कुछ लोग तुरंत प्रभावित हो जाते हैं, कुछ लोग सुनते सुनते भी प्रभावित नहीं होते। तो कैसे होता है ये कि जो व्यक्ति जो भक्त बहुत ही विनम्र भाव से और सेवा के भाव से सुन रहा है और जो ये प्रयास कर रहा है कि जैसे ये भक्तजन उठेंगे मैं इनकी सेवा करूंगा, इनके आदेशों का पालन करूंगा, तो ऐसे भक्त हृदय में ज्ञान तुरंत प्रवेश करेगा। और लेकिन जो झूठे अहंकार के भाव से बैठे हैं, भोग की प्रवृत्ति में बैठे हैं कि इससे अच्छा श्लोक तो मैं बोल लूंगा, इससे अच्छा ज्ञान तो मुझे है, मैं इनसे ज्यादा वरिष्ठ हूं, इस ढंग से हम बैठे हैं, तो फिर चाहे कुछ भी हम बोलें वो ज्ञान प्रवेश नहीं करेगा। तो मन को शुद्ध करना पड़ेगा जब हम आहार लेते हैं, सब इंद्रियों को शुद्ध करेंगे। और उसके बाद है पांचवा स्टेप, ये है कि जब हम सुने तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं हियरिंग मीन्स फॉलोइंग। तो इस सुनकर हमें उसको पालन करने का प्रयास करना चाहिए। तो हम हमारे अंदर वो दृढ़ता नहीं आती कि हम उसका पालन कर सके, वो दृढ़ता हम खो बैठते हैं, वो डिटर्मिनेशन नहीं रहती। तो डिटर्मिनेशन कैसे आएगी कि जो हम सुने उसका पालन करें? तो होलीनेस महर्षि स्वामी महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि दृढ़ता कैसे लाई जाए कि जो सुने उसका हम पालन करें। तो बता रहे हैं कि श्रवण में तीन क्रियाएं हैं। सबसे पहले तो हम सुने श्रवण, और दूसरा है मनन, इसके ऊपर हम ध्यान दें का मनन करें, और फिर है अपना अनुभव कि जो हमने सुना उसकी हम तुलना करें अनुभव के साथ, जो हमारा इस भौतिक जगत में क्या अनुभव हुआ। जैसे हमने सुना कि ये संसार दुखालय है तो ये हमने सुन लिया, फिर इसमें हम मनन कर सकते हैं, फिर हम अपने अनुभव जैसे तुलना कर सकते हैं कि वास्तव में ये संसार दुखालय है, इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। तो ये जब बात आ जाएगी तभी हमें हमारे अंतःकरण में प्रवेश कर जाएगी, और फिर हम उसको पालन करने में हमारे में दृढ़ता आएगी। होता क्या है कि या तो हम श्रवण सही ढंग से नहीं करते, श्रवण सही ढंग से कर लेते हैं तो मनन नहीं करते, अगर मनन कर लेते हैं फिर उसका अनुभव करने का प्रयास नहीं करते। तो किसी इन तीनों में से एक में कमी रह जाती है तो हमारे में दृढ़ता समाप्त हो जाती है और हम उसको पालन नहीं कर पाते। देखिए जो श्री प्रभुपाद जी ने पैकेज दिया है, इसके अलावा और कोई क्रिया नहीं करनी है हमें। हमारे लिए नित्य भागवत सेवा यही है, इसके बाद हम जाके अपनी सेवाओं में रत हो जाते हैं। अगर इसी एक घंटे में भी हम ध्यानपूर्वक श्रवण नहीं करेंगे तो कैसे हमारी चेतना शुद्ध होगी, कैसे हमारी उत्कंठा बढ़ेगी, कैसे हम भगवान को जान पाएंगे? और कोई प्रोसेस नहीं है, यही है जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, चैंटिंग करना, मंत्र भी यही रहेगा, और कोई मंत्र नहीं है, यही हरे कृष्ण महामंत्र है, यही श्रीमद् भागवतम है, यही भक्तों का संग है, यही सुनना है हमने, और कुछ नहीं करने वाले, और कोई चमत्कार होने वाला नहीं है कि अचानक हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी और भगवत धाम चले जाएंगे। इसी प्रोसेस को हमने सही ढंग से करना है। इस प्रोसेस में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि एक घंटे का भागवत श्रवण हो रहा है इसमें पूरा मेरा जीवन निर्भर कर रहा है, इससे मैंने कुछ नहीं सीखा, कुछ अपने जीवन में नहीं उतारा, तो ये मैं फुल टाइम भी हो गया हूं, प्रतिदिन सुन भी रहा हूं, व्यर्थ है। तो प्रतिदिन हमें प्रयास करना चाहिए, जो हमने भागवत श्रवण किया है क्या सिद्धांत, कौन सी ऐसी बात है जिसका मैं पालन करूं, कम से कम एक बात को ढूंढना चाहिए। नहीं तो चलता रहेगा ऐसे सालों साल बीत जाएंगे, हजारों कक्षाएं हम सुन लेंगे लेकिन हम वहीं के वहीं रहेंगे। श्री प्रभुपाद पकड़ जगह 15,000 के साथ उन्हें बता रहे हैं कि डू नॉट हियर लाइक हॉर्स, शुक्रों की तरह श्रवण नहीं करना चाहिए। शुक्रों की तरह श्रवण यह है कि बस आकर बैठ गए बस, और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कब महाप्रसाद गोविंद होगा फिर चले गए, फिर आके बैठ गए फिर चले गए। नॉट हियरिंग लाइक हॉर्स मीन्स कि हम ये सब प्रोसेस करें कि आज श्रवण किया इस पर मनन करें फिर कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिससे मेरे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये जो इस्कॉन संस्था है अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए, तो क्या इस दिशा में हम प्रगति कर रहे हैं? और इस दिशा में प्रगति करने के लिए यही हरे कृष्ण महामंत्र का जप है और यही भागवत श्रवण है और यही भक्त है, और कुछ नहीं होगा। भक्त नहीं बदलेंगे, भागवत नहीं बदलेगी, हरिनाम नहीं बदलेगा, यही रहेगा। अपने आप को बदलना है, हमें दृष्टिकोण को बदलना है। तो इस ढंग से हमें अपने महत्व इसको बहुत महत्व देना है, और फिर हमारे बहुत उत्सुकता होनी चाहिए सुनने के लिए। स्वयं चैतन्य छठा स्टेप है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु गौर पंडित से भागवत श्रवण किया करते थे। जब श्री प्रभुपाद भक्ति स्नान बारा से मिले ब्रजमंडल परिका में, तो उनके सारे शिष्य छोड़कर चले गए धीरे धीरे मंदिरों के दर्शन करने के लिए, लेकिन श्री प्रभुपाद अभी दीक्षित भी नहीं थे, चुपचाप वहीं बैठे रहे और सुनते रहे। और श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो कुछ बोल रहे थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बैठा रहा। और भक्ति स्नान बारा ने इनको पहचान दी और फिर बाद में बोले कि इनकी श्रवण में बहुत रुचि है और यही आगे जाके अच्छे वक्ता बने गए। भक्ति स्नान बारा पहचान गए दीक्षा के समय, यस आई नो दिस बॉय। तो देखिए, गुरु को भी हम आकर्षित कर सकते हैं, कृष्ण को भी आकर्षित कर सकते हैं, अगर हमारे में उत्सुकता है सुनने की। क्योंकि ये कथाएं जो है नवनीत हमेशा नई रहेंगी, इसमें कभी ये पुरानी नहीं होंगी। तो हमारा उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ना चाहिए कि हम कथाओं को श्रवण करें। तो ये कुछ स्टेप्स हमने सोचे जिससे हम अपने श्रवण को इम्प्रूव कर सकते हैं, कि हमारे में बहुत उत्सुकता हो, भक्तों की हम प्रशंसा करें, वैष्णवों की सेवा करें और अपनी इंद्रियों को शुद्ध रखें, और जो भी हमारे तर्क वितर्क चल रहे हैं उनको हम बंद कर दें, तो तभी हम इसको अच्छे ढंग से श्रवण कर पाएंगे। और हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि इसी श्रवण के माध्यम से ही हम भगवान को जान सकते हैं। और ये श्रवण भक्तों का संग ये एक घंटे का है, ये बस 8 से 9 लोगों में मिलता है, तो हमें पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। दुर्भाग्यवश ये होता है कि 8 बजे तक आते आते हम सब इतना थक जाते हैं कि हम जैसे भागवत श्रवण का शुरू होती है तो अधिकतर लोग सो जाते हैं। वो भी चलो अच्छा है, क्योंकि ये भागवत श्रवण इतनी दिव्य ध्वनि है, कोई कीड़े मकोड़े भी सुन रहे उनका भी लाभ होगा। ये बहुत दिव्य ध्वनि है कि यहाँ क्लास में उपस्थित होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करें कि ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें, और उस ध्यानपूर्वक श्रवण करने के बाद उसका मनन करें, उसमें से हम कुछ अमृत निकालें जिसको मुझे अपने आज अपने जीवन में उतारना है। प्रतिदिन अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर हम अपने क्रमशः अपने अंतःकरण को शुद्ध कर पाएंगे और फिर भगवान से हमारा साक्षात्कार होगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हजमी की खाती है। लिखा हुआ अधिकार है, जैसे हम लोग प्रवचन भी देते हैं, लेकिन प्रवचन देते हैं प्रवचन में बोलते भी नहीं, लेकिन हम लोगों को भी नहीं जाते हैं जो बोलते हैं प्रवचन में देते हैं, लेकिन इस दवाई को रोगी समझ करके लेते रहते हैं। पक्का धन्यवाद,
बहुत
धन्यवाद सर, थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे बातें इसमें से विचार के लिए बताई हैं, और इन बातों का हमें और अधिक विस्तार किया जा सकता है, बहुत ही विचार करने वाली बातें हैं जो आपने बताई हैं, किया जाए और अधिक इसका विस्तार किया जा सकता है। और एक बात और बात मिल जाए कि साथ में लगातार श्रवण के बारे में बोला जा सकता है, ये समस्याएं हैं कि अगर सात दिन तक क्या बोलोगे और जिनको नहीं सुना है वो भी नहीं सुनेंगे, आप अगर सात दिन तक बोलते रहोगे श्रवण करना चाहिए श्रवण करना श्रवण करना चाहिए, उनसे जो काल क्या सुना तो बोलेंगे कि कथा होती रही हम बैठे क्या सुना वो कृष्ण मैंने क्या सुना सबसे जिनको नहीं सुना तो नहीं सुनेंगे। और आपका नाम रुक्मणी कृष्ण है, रुक्मणी कृष्ण के बीच में जो संबंध है बड़े गए वो बताए से मदद पता है क्या काशी इसमें जो शब्द है साक्षात भगवान से दिया, भगवान साक्षात भगवान ने विश्व से श्रीमद भागवत प्राप्त किया। बाकी चंद्र के नेत्री में बताएंगे कि साक्षात भगवान ने फिर विष्णु को भागवत प्राप्त सुनाया, पता चलेगा कि शंकरषण भगवान में जिनके हजार मुख हैं उन्होंने विष्णु को सुनाया और किन विष्णु को सुनाया चार पावों को सुनाया। और मैं कई बनी अपनी जो गुरु परंपरा है उसका परिचय दे रहे हैं कि मैंने ये जो है श्रवण किया कहाँ से श्रवण किया है, तो कैसे आया भगवान से चार पुमानों ने शंकरषण भगवान से प्राप्त किया श्रीमद भागवत, और चार पुमानों ने बृहस्पति और को प्रदान किया परास्त्र अभी तक मिलते हुई विदुर जी को संदेश सुना रहे थे, वो संदेश सुना रहे थे जो भगवान कृष्ण दे दिए गए जब अपने परामनामे जा रहे थे, तो धनजी को संदेश दिया और मिलते हुई को दिया भगवान ने आदेश दे कि मैंने विदुर जी को सुना है। और आज विदुर जी की जो है जो कृष्ण है अभी लोक कल्याण के लिए बहुत पूरा विषय है मैत्री मुनि को सुनाना है, इस कारण से वो जो संदेश का जो सुना मैत्री मुनि से वो विदुर जी ने ही किया था। और अब ये जो विदुर जी ने प्रश्न किए हैं जिसके अध्याय में बहुत से तो लोगों के कल्याण के लिए हैं कि हमें प्रश्न न करना पड़े, हमारे लिए बने बनाए प्रश्न जो है विदुर जी ने कर दिए, और अब हमें जो है उनको सुनना है भागवत के जितने लक्षण हैं तो उन्हें सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है जो विदुर जी ने पूछे हैं, इसलिए भागवत को जो है वो आप सुनाना चाहते हैं, इसलिए श्रीमद भागवत के लक्षण वो पूरा मैत्रेय मुनि विदुर जी देना चाहते हैं, इसलिए आप वो परंपरा बता रहे हैं।
पूरा और प्रसिद्ध में प्रवेश कर जाता है, उनके मुख से सुनेंगे तो आचार्य
जाने से गुरु महाराज के मुख से सुनेंगे एक अलग ही उसका प्रभाव होता है, और वो एक साधक भक्त से सुनेंगे उससे उतना शुभकारी नहीं होगा। लेकिन हमने श्रवण के ऊपर जो प्रक्रिया उसके ऊपर ध्यान देने का प्रयास किया कि हमें जो हमारे पास समय उपलब्ध है, जो हमें श्रवण का अवसर प्राप्त हुआ है, उसका हम पूरा लाभ उठाएं। निश्चित रूप से जो परम शुद्ध भक्त के मुख से सुनेंगे वो परम शुद्धकारी होगा, और एक साधक भक्त के मुख से सुनेंगे वे अर्थों से संघर्ष कर रहा है उसकी शब्द ध्वनि इतनी शुद्धकारी नहीं होगी। लेकिन फिर भी हमें जैसे चाणक्य पंडित कहते हैं कि कहीं भी अच्छी वस्तु मिले उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अब उस घंटे एक घंटे में बैठे हैं और हमें यही चिंता करते हैं नहीं नहीं इसका तो आचरण ठीक नहीं है, ये चार दिन पालन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, और उस पर ध्यान नहीं दे रहे जो भागवत संदेश वो दे रहे हैं, तो हाँ उसमें हम अपना और दूषीकरण कर रहे हैं। उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पक्का तो शुद्ध हो जाएगा, वो तो साधना करते हुए शुद्ध हो जाएगा, भगवान का संदेश हो रहा है, लेकिन हम शुद्ध हमारा और दूषीकरण हो जाएगा कि हम उनके अपनों पर ध्यान देंगे। तो हमें फिर ये प्रयास करना चाहिए कि जो वो संदेश दे रहा है उसको ग्रहण कर रहे हैं वो तो शुद्ध।
इस विषय में कई बार चर्चा होती है और इसका उत्तर भी दे देता है, तो इसी तरह की बात है कि हम जब श्रवण करते हैं तो इसमें एक तो इस तरह विचार करना चाहिए कि प्रभुपाद का आदेश है, प्रभुपाद का आदेश है, हाँ इसलिए हमें बैठना है, क्या इच्छा है या नहीं है, और ये तपस्या भी है, तपस्या है आपका मन चाहता है तो कृपया श्रवण करो, और अपने जो मन के जो भाव हैं तो उनको आप दबाने का प्रयास करो, और प्रभुपाद ने जो विधि बनाई है क्लास की इसमें ये बनाई है सबसे पहले परमात्मा का कीर्तन है, तो इसी को उनका तो शनि जो बोलना है, इसके बाद फिर जो श्लोक है उसमें कुछ समय क्या है कर दिया है उसको, और हो सकता है कि कुछ गलती हो, निर्णय करने में गलती हो, तो गलती को नहीं बैठाना चाहिए था, फिर भी अगर बैठा दिया गया तो हमारा क्या, हमें क्या जरूरत है क्या इस विचार करें कि उन्होंने किया और सही किया है, हमारा यही काम है कि ध्यान रखें अपने भी कहने का देश में जो पैर डाल के तो बुरा सुनेगा अच्छा लाभ हो अच्छा बताओ अच्छा नहीं है तो हमें विचार नहीं है इसलिए नहीं करना है सही किया गया है गलत किया गया है कौन व्यक्ति कौन बैठा हुआ है हमारा नियम है तो बात फिर बाद में आप विचार कर सकते हो ये व्यक्ति को प्लान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए और किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए फिर विचार नहीं हम क्यों नहीं जाए हम क्यों छोड़े जाए इसको क्यों बैठा दिया क्लास में उसका हाथ दुनिया को सीख
मनकोटे वैष्णव बन के जाए
जाए
creative